बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 13 अगस्त 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और साथ ही साथ हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। मित्रों, आज 13 अगस्त ही नहीं है बल्कि सोमवार का दिन भी है और आप समझ गए होंगे कि मैं सोमवार की याद आपको क्यों दिला रहा हूं। यानी कि आज हम किसी के जीवन प्रसंग से कुछ अपने लिए अर्थ निकालने की कोशिश करने वाले हैं, लेकिन आज फिर से मैं जीवन प्रसंग के बारे में कुछ एक छोटा सा नया प्रयोग करने के लिए सोच रहा हूं मित्रों, और मुझे यकीन है कि आप सब मुझे इस बात की सहर्ष इजाजत भी देंगे। दरअसल हुआ ये कि कल रात में हम लोग एक परिवार के साथ बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी, लगभग 10 बजे का समय हो चुका था। बातचीत के दौरान फिर फिल्मी गीतों पर बातें चलने लगी, फिल्मी गीतों पर, पुरानी फिल्मी गीतें और आज के गीत और बहुत अलग अलग तरह के गीतों के बारे में। दरअसल सुबह सुबह मैंने एक गीत सुना था जो सत्यमेव जयते में आया करता, ओरी चिरैया। ये गीत सुबह से मेरे दिमाग में गूंज रहा था, तो वहीं से उस बात की शुरुआत हुई कि कितना प्यारा गीत है, कितना भावनात्मक है, कितनी गहराइयों तक ये गीत उतर जाता है। उस पर फिर अब गीतों का सिलसिला चल निकला। तो दोस्तों, जब गीतों के बारे में बातें होने लगी तो मुझे मेरी आंख फटी की फटी रह गई और कान यूं कह लीजिए कि खड़े के खड़े रह गए। अब जानना चाहेंगे क्यों? इसलिए कि जो एक महिला थी, उनकी उम्र होगी लगभग मैं समझता हूं कि 45-50 के बीच की होगी, बहुत पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन शहर में रह रही हैं और समझदार हैं, बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत महिला हैं। वो जब गीतों के बारे में बताने लगी और बात करने लगी तो दरअसल मेरे कान खड़े हो गए और बिल्कुल आंखें फटी की फटी रह गई। मतलब कौन सा गीत किसने गाया है, कब का है, किस फिल्म का है, किसने म्यूजिक दिया है, और मजेदार बात यह कि वो गीत को पूरा पढ़कर के बता सकती हैं, आपको सुना सकती हैं। एक दो गीत नहीं, सैकड़ों गीत। मित्रों, गीतों का प्रेमी तो मैं भी हूं, लेकिन मैं बड़े अर्ध किस्म का प्रेमी हूं। इस मायने में कि मुझे गीत के शुरू के दो चार लाइनें तो याद रहती, कुछ गीत हैं जो पूरी तरह से याद होंगे, अदरवाइज बस शुरू के दो चार लाइनें याद रहती हैं, बस गुनगुना लिया, सुन लिया, आनंद उठाने में जरूर मैं पीछे नहीं हूं, लेकिन मुझे गीत याद नहीं है। मुझे ये नहीं मालूम कि किसने गाया है। मुझे तो सीधी सी बात है कि अगर कोई बहुत अच्छा गीत लगता है तो मैं कह देता हूं कि अगर मेल वाइज है तो ये मोहम्मद रफी का होगा और अगर फीमेल वाइज है तो ये लता मंगेशकर का होगा। हालांकि बहुत बार मैं गलत भी साबित होता हूं, लेकिन उन्हें आप गलत साबित कर ही नहीं सकते थे। तो मैंने सोचा कि ये गीत इन्हें इतने ज्यादा कैसे याद है, कैसे मालूम है। तो फिर जब मैंने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि दरअसल दिन भर उनका, आप यूं कह लीजिए कि ट्रांजिस्टर चलता रहता है, उसमें पेन ड्राइव लगी रहती है, उसमें उन्होंने अपने पसंद के खूब सारे गीत रिकॉर्ड कर रखे हैं और दिन भर सुबह से लेकर के शाम तक वो गीत चलते रहते हैं। इतनी ज्यादा वो गीतों की प्रेमी है। दोस्तों, यहां से फिर मेरे दिमाग में एक चीज कौन थी, एक बात कौन थी, और वही मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि गीतों में, इसे आप थोड़ा सा और कन्वर्ट कीजिए कि पोएट्री में, देखिए गीत पोएट्री है, पोएट्री का एक फॉर्म है, सुगम संगीत है, संगीत का एक फॉर्म है, चाहे वो फिल्म में गीत हो, चाहे वो लोक के गीत हो, चाहे वो साहित्य में लिखी गई कवि, साहित्य की किताब में लिखी गई कविता हो, कोई भी है, तो फॉर्म ऑफ पोएट्री, वो एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। यानी कि काव्यात्मक अभिव्यक्ति में इतनी जबरदस्त ताकत होती है कि वो हर को बांध कर रख सकता है, हर के गहरे वो उतर जाता है। ऐसा क्यों है? अदरवाइज इन्हें कैसे इतना याद होता? और केवल याद ही नहीं है, जब आपका किसी के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, और इस सब का अनुभव तो आप लोगों को रहा ही होगा, तो देखिए कैसे उसकी छोटी छोटी चीजें आप जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, निहारते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं और उसके प्रशंसक बन जाते हैं, क्योंकि आपको उससे सच्चा प्यार है, गहरा प्यार है। और जितना सच्चा होता चला जाएगा, जितना गहरा होता चला जाएगा, आप उसके बारे में उतने व्यापक ज्ञान हासिल करने की कोशिश करेंगे, जो उन्होंने प्रूव किया कि वो सही मायने में मुझसे भी कई गुना आगे, एक दो गुना नहीं, कई कई गुना आगे गीतों की प्रेमी है, पोएट्री की, यानी कि पोएट्री। तो क्या यह सबको बांध करके रखता है? मुझे यकीन हो गया मित्रों कि यह सबको बांध करके रखता है। ऐसा नहीं कि पहले यकीन नहीं था, लेकिन आप यूं कह लीजिए कि मेरा वह यकीन बहुत मजबूत हो गया। अब दोस्तों इसे मैं जीवनी से जोड़ता हूं, अदरवाइज आप कहेंगे कि ये सर किस किस की बात करने बैठ गए। जीवनी ये कि मुझे अचानक मेरे दिमाग में एक वाक्य कौन था, और ये वाक्य है चार्ल्स डार्विन का। और चार्ल्स डार्विन का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो मूलतः वैज्ञानिक है जिन्होंने ये बताया है कि इस धरती पर मनुष्य कैसे बना, या कह लीजिए कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। और आप सबने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना ही होगा, उनकी थ्योरीज जो है, उनके जो सिद्धांत हैं वो आपको मालूम होंगे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सिलेक्शन ऑफ नेचर, प्रकृति का चयन और संघर्ष, अस्तित्व के लिए संघर्ष, ये सारे सिद्धांत उन्होंने दिए हैं। एक महानतम वैज्ञानिक, छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं। मैं वैज्ञानिक की बात इसलिए कह रहा हूं कि देखिए वैज्ञानिक क्या कहते हैं। मैं वैज्ञानिक के केवल एक वाक्य का उल्लेख कर रहा हूं आज जीवनी में। मैंने इसलिए कहा कि मैं कुछ एक नया सा प्रयोग आप सबके सहमति से करने जा रहा हूं। उन्होंने अपनी जब ऑटोबायोग्राफी लिखी मित्रों, तो ऑटोबायोग्राफी के में उन्होंने एक उल्लेख किया है और वो बड़ा संवेदनशील उल्लेख है। उन्होंने उल्लेख किया है कि अपना सब काम खत्म करके, यानी कि रिसर्च वर्क पूरा करके, ये बहुत ही ऋषि तुल्य व्यक्ति थे चार्ल्स डार्विन, बहुत ही समर्पित व्यक्ति। इंग्लैंड से 50-60 किलोमीटर दूर एक गांव में जाकर के रहते थे और वहीं वो अपना सारा रिसर्च का काम करते थे। इनको दुनियादारी से ज्यादा मतलब नहीं था। इन्होंने लिखा कि जब अपना सारा ये सब काम धाम निपटा करके, और एक दिन मैं कविता की किताब लेकर पढ़ने बैठा, पोएट्री की किताब लेकर पढ़ने बैठा, और जब मैं पोएट्री की किताब लेकर पढ़ने बैठा तो मुझे पोएट्री में मजा नहीं आया। और तब मैंने रियलाइज किया, इसको ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, तब मैंने रियलाइज किया कि मेरी जिंदगी में चाहे जितनी भी दूसरी अन्य बड़ी उपलब्धियां क्यों ना रही हो, लेकिन मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। देखिए वो क्या कह रहे हैं, चार्ल्स डार्विन जैसा व्यक्ति कि तार्किकता के आधार पर मैं विज्ञान के इतने चरम पर तो पहुंच गया और आज पूरी दुनिया में मेरे नाम का डंका बज रहा है और मैं इतिहास की किताबों में अब अमर हो जाऊंगा, मैं जानता हूं यह मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जब मैं पोएट्री की किताब पढ़ रहा हूं और उस पोएट्री में मुझे मजा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि मेरे अंदर कुछ मर गया है। और वो जो मरा है वो क्या है? वो जो मरा है वो भावना है। जो मरा है शायद वह मनुष्यत्व है। जो मरा है शायद वह संवेदना है। जो मरा है शायद वह हृदय तत्व है, जो भी है, लेकिन वो नष्ट हो गया है। और अगर वही नष्ट हो गया है तो फिर मैंने चाहे कुछ भी जीवन में हासिल क्यों ना कर लिया हो, उसका अब कोई अर्थ नहीं है। ये रियलाइजेशन वो जिंदगी के अपने बिल्कुल उत्तरार्ध यानी कि तट पर पहुंचने की बात करते हैं कि मैं खत्म हो चुका हूं, आई एम फिनिश्ड। इसका मतलब है कि अगर हम पोएट्री को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने जिंदगी की अपनी सबसे बड़ी धरोहर, सबसे अमूल्य वस्तु खो दी है, क्योंकि अब हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी ही नहीं रह गए हैं, क्योंकि पोएट्री हमसे गायब हो गई है। मित्रों, इसके जरिए जो मैं आपसे सबसे जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि पोएट्री के प्रति प्रेम, पोएट्री के प्रति चाहत, ये मानकर चलिए कि हमारे मनुष्य होने का प्रमाण है। और आप सब, हम सब जितने भी लोग हैं, पोएट्री को किसी न किसी फॉर्म में पसंद करते ही हैं। चाहे हम फिल्मी गीत के रूप में ही क्यों ना पसंद करें, वो भी पोएट्री है, राइट? तो अब हमें करना क्या है, जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूं, हम सब पसंद करते हैं, हम कोशिश करें कि अपने अंदर की इस पोएट्री को बनाए रखें, इस पोएट्री को बचाए रखें। क्योंकि चारों तरफ का अभी जो माहौल है, सच पूछिए तो वो लगातार हमारी काव्यात्मक अनुभूतियों पर चोट करता रहता है। चाहे वो महानगरीय जीवन की आपाधापी हो, चाहे हमारी अपनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हो, चाहे हमारी रेट रेस हो, जिंदगी की रेट रेस हो, चाहे धन कमाने की हमारी भयानक लालसा हो, चाहे ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उपभोग करने की हमारी तीव्र इच्छा हो, इस सारी चीजें हमारी जो पोएट्री की संवेदना है उसको कुचलती चली जा रही हैं। यानी कि हमारे हृदय में, हमारी चेतना में जो रेशे होने चाहिए, जैसे आप कालीन, हाथ से बुने हुए कालीन को देखिए तो ऊपर उसके कुछ रेशे मौजूद रहते हैं, रेशे रेशे, और वही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। हमारे चेतना के वो रेशे इन सब के कारण दबते चले जा रहे हैं। हम जीवित रूप में मनुष्य दिखाई तो देते हैं, लेकिन सही मायने में जो तत्व हमें मनुष्य बनाता है, जिसे हम इनफैक्ट देख नहीं पाते, वो कहीं ना कहीं डाइंग सिचुएशन में होने लगते, आने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं मरने लगते हैं। और मित्रों, चार्ल्स डार्विन अपनी आत्मकथा की से एक वाक्य के माध्यम से हमें सचेत करते हैं कि अपने अंदर के इस कविता को कभी भी मरने मत दीजिए। अगर कविता मर गई तो जीवित रहते ही हम सब मर चुके होंगे। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।